कड़ी पाने के लिए विश्वभानु महाराज और नंद महाराज बरसान और नंदग्राम से यहाँ आए थे गोकुल और रावण में। ये स्थान का नाम है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे माता यशोदा को श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कहाँ कराया दर्शन? आसमान में, उनके मुंह में, उनके मुखारविंद के भीतर। तो हुआ ये कि एक बार श्री कृष्ण बलराम जी के साथ और अन्य ग्वालबालों के साथ खेल रहे थे, जैसे साधारण बच्चे खेलते हैं। और यदि ये कृष्ण भगवान की लीला की खूबी है, माधुर्य वृद्धि करने वाली बात है, कि भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह है, क्रीड़ा करते हैं, कार्य करते हैं, और ऐसे कार्यों की वजह से वो अपने भक्तों के लिए और भी प्रिय बन जाते हैं। अगर भगवान होते हुए वे केवल ऐसे कार्य प्रदर्शित करते जो भगवान कर सकते हैं, जिनमें केवल उनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन होता है, उनके शक्ति का, बल का, बुद्धि का प्रदर्शन होता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतनी मधुर नहीं होती। परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए ब्रज में आकर इस बात को भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और उनके अनेक अन्य भक्त जो हैं वो भी इस बात को जानते नहीं हैं कि वो भगवान है, और क्योंकि श्री कृष्ण साधारण मनुष्य की तरह ही क्रीड़ा करते हैं, इसलिए इन लीलाओं का विशेष महत्व है। इसलिए ब्रज को माधुर्य धाम कहा गया है, जबकि मायापुर को औदार्य धाम कहा गया है। औदार्य मतलब उदारता। वहां पर मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु विराजे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के परम कृपालु रूप हैं, कलयुग के पतित जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। और यहाँ वृंदावन में माधुर्य का प्राधान्य है, जैसे मायापुर में औदार्य का प्राधान्य है, वैसे ब्रज में माधुर्य का प्राधान्य है। माधुर्य मतलब मिठास। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की मिठास इसलिए है कि वो खास करके यहाँ ब्रज में ऐसे साधारण बच्चे की तरह लीला करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान ही है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक साधारण बच्चा भी जब लीला करता है, ये कार्य करता है, तो वो सबको आकर्षित करता है। उसकी टोपली बोली और उसके अनेक कार्य सब लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही कार्य करते हैं, जब भक्त ये सोचते हैं कि साथ साथ ये भगवान भी हैं, तो इन दोनों चीजों को, सत्यों को मिलाकर एक अति मधुर वातावरण निर्माण हो जाता है। यहाँ गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने वात्सल्य रस का आनंद लिया। आगे चल के वृंदावन में उन्होंने सच्च रस का आस्वादन किया, अपने मित्रों के साथ खेला, क्रीड़ा किया, और नंदग्राम में श्रृंगार रस या माधुर्य रस, गोपियों के साथ में उन्होंने कई लीलाएं की। तो गोकुल में हालांकि श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ क्रीड़ा किया करते थे, लेकिन वो थोड़ी बाद में, लेकिन विशेषकर की शुरुआत में और बीच में कृष्ण भगवान इतने छोटे थे कि वो केवल अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहते थे। साधारण मनुष्य समाज में भी हम देखते हैं कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो पूरी तरह से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे से वो स्वतंत्र होने लगता है अपने माता पिता के प्रभाव से। फिर वो एक नई दुनिया में आता है, अपने मित्रों की दुनिया में, और मित्रों के साथ खेलना पसंद करता है। फिर माता पिता को बुलाना पड़ता है, खेलना बंद करो, जल्दी आओ, अभी प्रसाद लेना है, पढ़ाई करना है, सोना है। अभी वात्सल्य रस के बाद अभी सख्य रस का आस्वादन होता है और बच्चा दिन भर खेलता है। और थोड़ी उम्र बढ़ जाती है फिर तरुण और तरुणी की समस्या आ जाती है। तरुण तरुण की प्रति आकर आसक्त हो जाते हैं, तरुणी तरुण के प्रति, और फिर आगे चल के संसार की समस्या में व्यक्ति उलझ जाता है। इसलिए एक संत ने कहा है, बाल्य स्तावत क्रीड़ा सकता है, तरुण स्तावत तरुणी सकता है, वृद्ध स्तावत चिंता सकता है, परों के भ्रमण को भी न सकता है। वो कहते हैं कि बाल्यावस्था में जो व्यक्ति होता है वो क्रीड़ा से आसक्त होता है, केवल दिन भर खेलना चाहता है। आपने देखा होगा बच्चे लोग दिन भर खेलना चाहते हैं, ये स्वभाव है उनका। और जब तरुण हो जाता है तो तरुणी के प्रति आकर्षित हो जाता है, ये भी स्वभाव है उस आयु का। और जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो उसका काम क्या होता है?
चिंता,
चिंता करते हैं ये क्या होगा, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ऐसे सारा आयु खत्म हो जाता है, पर ब्रह्म ही को पी नहीं सकता, लेकिन पर ब्रह्म भगवान के बारे में चिंतन करने के लिए समय किसके पास है? किसी के पास नहीं, सारी आयु ऐसे निकल जाती। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण मनुष्य समाज की नकल कर रहे हैं। मनुष्य समाज में आके जैसे छोटा बच्चा करता है वैसे वो भी कर रहे हैं। छोटा बच्चा क्रीड़ा से आसक्त होता है, अपने माता पिता से आसक्त होता है, तो ऐसे वात्सल्य रस सत्य रस का आस्वादन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्रीड़ा करते करते अपने मित्रों के साथ झगड़ पड़े, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, खेलते खेलते एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के साथ झगड़ा करने करने लग जाते हैं। और एक दिन माता यशोदा के पास कृष्ण के बारे में शिकायत आई और बलराम जी भी खुद शिकायत लेकर आए। और शिकायत क्या थी? कि माता यशोदा, आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा को बहुत दुख हुआ, चिंता भी हो गई कि अरे कृष्ण ने मिट्टी खाई। तो कृष्ण को जल्दी बुलाया, कृष्ण तुमने मिट्टी खाई? और बलराम कह रहा है, अगर केवल दूसरे बच्चे कहते तो मैं इतनी गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन बलराम तुम्हारे बड़े भाई भी कह रहे हैं, बलराम तो कभी झूठ नहीं बोलते। माता यशोदा को बलराम के ऊपर बहुत विश्वास था, तो कृष्ण की रक्षा के लिए हमेशा बलराम को साथ में भेजते। और आगे चल के भी जब कृष्ण वन में जाते बछड़ों को चराने के लिए और आगे चल के गायों को चराने के लिए, तो माता यशोदा हमेशा ये देखती कि कृष्ण के साथ बलराम भी अवश्य जाए। तो बलराम जो भी कहते थे यशोदा माता बहुत विश्वास करती थी। तो माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि देखो बलराम भी कह रहे हैं। तो कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, हमेशा कोई ना हर समस्या के उत्तर होता है कृष्ण। तो कृष्ण ने कहा कि माता देखो, ये मेरे से झगड़ पड़े और बलराम जो है ये भी मेरे साथ झगड़ पड़े, अब ये बदला लेना चाहते हैं, अब मुझसे बदला लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास आके झूठ बोल रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाई। मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? ये तो सरासर झूठ है। और देखो अगर तुम मानती नहीं हो, तुम सत्य क्या है जानना चाहती हो, तो मेरे मुंह में देखो। अगर मिट्टी खाली है मैंने तो मेरे मुंह के अंदर मिट्टी होनी चाहिए। तो माता यशोदा को ये बात अच्छी लगी, हाँ ये प्रमाण है, तो खोलो जल्दी से खोलो मुंह, देखते हैं मिट्टी है या नहीं अंदर। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुंदर मुखारविंद खोल दिया, और जैसे ही खोल दिया माता यशोदा अंदर देखने लगी, और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हालांकि ब्रज भूमि माधुर्य भूमि है, यहाँ पे माधुर्य लीलाएं होती हैं, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं रहता यहाँ पे। भगवान वृंदावन में भी सर्वैश्वर्य पूर्ण है, ऐसा नहीं है कि वृंदावन में माधुर्य का प्राधान्य है इसलिए ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है, नहीं बल्कि ऐश्वर्य की परिपूर्णता भी ब्रज में पाई जाती है, परंतु यहाँ का माधुर्य इतना तीव्र है, इतना गाढ़ा है कि ये ऐश्वर्य को ढक देता है। लेकिन कभी कभी भगवान ऐसे ऐश्वर्य का प्राकर्षित करते हैं और कोई अद्भुत कार्य कर बैठते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि वो भगवान है, परम सत्य है। जैसे अचानक वो किसी असुर को मार डालते थे, हालांकि वो थे छोटे से बच्चे, फिर भी असुर को, बड़े बड़े असुरों को मार डालते थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ऐसे ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते थे। तो इस प्रकार से एक साधारण बच्चे की तरह कभी कभी बर्ताव करना और कभी कभी भगवान की तरह एक अद्भुत और विचित्र ऐश्वर्य का, शक्ति का प्रदर्शन करना, ये दोनों तरह के कार्य मिल जाते थे तो ब्रजवासी बेचारे पूरी तरह से भ्रमित हो जाते थे कि कुछ समझ में नहीं आ रही कृष्ण है क्या। और नंद महाराज को भी जब भी कोई ब्रजवासी जाके बोलते थे कि कहीं आपका लड़का कोई देवता तो नहीं है ना, कोई भगवान तो नहीं है ना, तो हंसते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जब बादलों की गड़गड़ाहट सुनते थे तो धीरे से अपनी माँ की गोदी में जाके कूद बैठते, भगवान तो ऐसे करते नहीं है ना। भगवान किस चीज से डरते हैं? सभी लोग भगवान से डरते हैं। तो कृष्ण भगवान ऐसे कार्य करते हैं जिसे सभी लोग मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को समझना बहुत ही कठिन है, और इसलिए हमें केवल शास्त्र चक्षु से जो महान भक्त हैं, जो उन्होंने टीकाएं लिखी हैं, जो उन्होंने वर्णन किया है, हम उन वर्णनों से हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझ पाते हैं। तो माता यशोदा ने उस समय भगवान श्री कृष्ण के खुले हुए सुंदर मुखारविंद के भीतर क्या देखा? सारा ब्रह्मांड देखा। वैसे भगवान श्री कृष्ण के उदर में सारा ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि, सारी भौतिक सृष्टि भगवान श्री कृष्ण के भीतर है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वा प्रवर्तके इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समंजिता। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि मुझसे उत्पन्न होते हैं, और जो इस बात को भली भांति जान लेता है वो बड़े भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है। तो सब कुछ जब भगवान से उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब कि सब कुछ भगवान के भीतर है, भगवान से कोई चीज स्वतंत्र नहीं है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुंदर मुखारविंद में माता यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है भगवान के लिए। हाँ, माता यशोदा को आश्चर्य अवश्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि माता यशोदा केवल ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण मेरा लाडला बच्चा है। माता यशोदा कभी ये नहीं सोचती थी कि मेरा बच्चा भगवान है। अगर ऐसा सोचती माता यशोदा तो उनका वात्सल्य प्रेम प्रदूषित हो जाता, विकृत हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ऐसा प्रेम अपने भक्तों से चाहते हैं जो कोई ऐश्वर्य भाव से मिश्रित न हो, क्योंकि ऐसे ऐश्वर्यहीन मधुर भाव में ज्यादा मिठास होता है, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को ज्यादा आनंद आता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के निवासियों से ज्यादा प्रेम करते हैं और वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते हैं, क्योंकि वृंदावन के निवासियों का प्रेम इतना मीठा है, इतना तीव्र है और इतना ऐश्वर्यहीन है, ऐश्वर्य रहित है कि श्री कृष्ण ऐसे प्रेम से बांध ले जाते हैं। तो जब माता यशोदा ने सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया उस समय तो बिल्कुल हड़बड़ा रहे कि अरे ये क्या हो गया, और उनके मन में तरह तरह के विचार बढ़ने लगी। वो सोचने लगी कि अरे मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई, नहीं पागल तो नहीं हूं, मैं तो हूं ठीक ही, नहीं मैं तो कोई देवता मेरे ऊपर कुछ उन्होंने कुछ जादू टोना तो नहीं किया, नहीं नहीं ऐसे क्यों करेंगे देवता मेरे ऊपर, मैंने देवताओं को क्या बिगाड़ा है, अरे कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, नहीं सपना मैं तो जगी हुई हूँ। ऐसे तरह तरह के वो तर्क करने लगी, विश्लेषण करने का प्रयास किया माता यशोदा ने, हैरान होकर सारा विश्लेषण करना बंद कर दिया, क्योंकि ऐसा विश्लेषण करने से कोई नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने, ये मेरे लाले बच्चे के मुख में ब्रह्मांड देख रही हूँ, ये क्या है, सारे ग्रह हैं, लोक हैं, सूर्य है, चांद है, और इतना ही नहीं उन्होंने देखा कि वो खुद कृष्ण को दूध पिला रही हैं, ये सब कृष्ण के मुख के अंदर देखा। और जब माता यशोदा पूरी तरह से भ्रमित हो गई और कृष्ण भगवान ने देखा कि अब माता यशोदा के शुद्ध मधुर वात्सल्य प्रेम में कोई तरह की विकार आने की संभावना है और माता यशोदा के मन में कोई संशय हो सकता है कि मेरा बच्चा केवल एक साधारण बच्चा है या कोई और कोई हो सकता है, उस समय भगवान कृष्ण ने ये दृश्य निकाल और फिर एक साधारण बच्चे की तरह श्री कृष्ण फिर से हंसने लगे। फिर माता यशोदा सोचने लगी अरे नहीं मैंने कुछ तो शायद मेरा शर चकरा गया था, कुछ ऐसे मैंने दृश्य देख लिया, कोई बात नहीं। माता यशोदा भूल गई उस बात को और फिर से अपने लाडले बच्चे को उन्होंने आलिंगन किया और भूल गए कि ऐसा कोई आरोप था कि इसने मिट्टी खाई नहीं खाई। तो ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी खाई भगवान, तो भगवान चाहते हैं कि माता से डांट नहीं मिले, तो भगवान ने क्या करके सोची देखी, ऐसा एक दृश्य दिखा दिया जिससे माता यशोदा भूल चुकी है कि ऐसा कोई आरोप था, आगे को डांट पड़ने का कोई सवाल ही नहीं। ये निश्चित है कि यहाँ भी बैठे हुए बच्चे वो भी ऐसा आशा करते हो कि हमारे अंदर भी ऐसी कोई शक्ति होती कि हम कुछ शरारत करते ऐसे कुछ दृश्य दिखा देते हमें माता को भ्रमित कर देते फिर माता भूल जाती कि हमारे प्रति ऐसा कोई आरोप है। लेकिन एक दुनिया के साधारण बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। तो माता यशोदा का ये अहो सौभाग्य है कि उनको उनके लाडले पुत्र के रूप में परम सत्य भगवान पुत्र के रूप में आए और ऐसा स्नेह का आदान प्रदान माता यशोदा और कृष्ण के बीच में हुआ जो कि अतुलनीय है। माता देवकी का प्रेम भी माता यशोदा जितना नहीं है, बल्कि बहुत अंतर है दोनों के प्रेम में। क्यों? क्योंकि माता देवकी का जो वात्सल्य प्रेम है वो ऐश्वर्य भाव से दूषित है। मतलब क्या? अर्थात माता देवकी को ये पता है कि श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए उनका प्रेम उतना मधुर नहीं है। माता देवकी का प्रेम ऐश्वर्य युक्त है और माता यशोदा का प्रेम ऐश्वर्य रहित है, इसलिए माता यशोदा का प्रेम श्री कृष्ण ज्यादा मधुर समझते हैं। और यही कारण है कि माता यशोदा को और नंद महाराज को यह सौभाग्य मिला कि वो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन करें और इसमें शामिल हों। माता देवकी और वसुदेव को ये सौभाग्य नहीं मिला। हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण के माता और पिता थे। माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस के कारागार में जन्म लिया, लेकिन तुरंत जन्म लेने के बाद वो माता पिता को छोड़ के चले गए। देवकी और वसुदेव को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए अवसर नहीं मिला, लेकिन माता यशोदा नंद महाराज ने खूब भगवान श्री कृष्ण से वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान किया। तो ये घटना, ऐसा कहा जाता है कि भगवान का मृत्यु थाना इसी स्थान में हुआ, ब्रह्मांड घाट, और विशेष करके जिस स्थान में हुआ ये इससे बाद वाला घाट है। हम वहां पे अभी इस कथा के बाद वहां पे जाएंगे, और वहां आप केवल चाहें तो यमुना का जल छिड़क सकते हैं, ये तो यहाँ भी छिड़क सकते हैं, ये यमुना वो यमुना एक ही है, यहाँ भीड़ नहीं है। आप यहीं पे थोड़ा सा जल लेकर आचमन कर सकते हैं, थोड़ा अपने सर के ऊपर आप बूंद बूंद डाल सकते हैं, पूरा दंडवत कीजिए, यमुना जी को प्रणाम कीजिए, यमुना जी के चरण कमलों में कृपा याचना कीजिए। यमुना देवी पूरी तरह से समर्थ हैं कृष्ण प्रेम हमें प्रदान करने के लिए, क्योंकि यमुना देवी स्वयं परम कृष्ण भक्त हैं, और उनके जल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने गौओं के साथ, गोपियों के साथ बहुत लीलाएं की हैं। तो यमुना जी गंगा देवी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि यमुना ये भगवान की क्रीड़ा का स्थान है, और गंगा देवी भी प्रार्थना करने लगी भगवान से कि जो सौभाग्य यमुना जी को प्राप्त हुआ, मेरे बहन को प्राप्त हुआ, वो तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कब वो दिन आएगा जब आप मेरे जल में ऐसे ही क्रीड़ा करेंगे। फिर कृष्ण भगवान भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों की बात सुनते हैं, तो जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने गंगा के तट में जन्म लिया मायापुर में, और उस समय उन्होंने गंगा जी में बहुत लीलाएं की, तो गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हो गई। तो इस कथा के बाद फिर हम जाएंगे, 2 मिनट का रास्ता है, यहाँ से जल्दी से होकर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे और फिर अपने अपने बसों में हम चले जाएंगे। फिर आगे हमें जाना है गोकुल, जहाँ जब भक्त आते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी यहाँ की ले जाते हैं और हर रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी खाते हैं। तो आप भी ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं।
हरि बोल।
ये आखिर हमारी परंपरा है, परंपरा कृष्ण से चालू होती है, तो कृष्ण ही मिट्टी खाएगी वहां से। इसलिए आदि गुरु हैं वो जगत गुरु हैं श्री कृष्ण, तो हम भी वहां से थोड़ी मिट्टी ले सकते हैं, और हर रोज जैसे औषध की तरह कमे की तरह थोड़ा थोड़ा अपनी मिट्टी ले सकते हैं, जैसे जब भव रोग है वो दूर हो सकता है। प्रभुपाद जी जब यहाँ पर आए थे ब्रह्मांड घाट में, खुद भी उन्होंने यमुना जी में स्नान किया था, हालांकि पहले वो जाने के लिए चाह रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब सारे भक्त अंदर गए और बड़े उत्साह से तैर रहे थे तो प्रभुपाद जी अपने आप को रोक नहीं पाए, और जब भक्तों ने घूम के देखा तो प्रभुपाद जी और उनके साथ भी स्नान कर रहे थे। तो ये स्थान बहुत ही पवित्र है, तो इस कथा का स्मरण करते हुए हमें वहां जाना चाहिए, फिर आपस में बातचीत करना और विशेष करके प्रयोग करना बिल्कुल नहीं करें, और अपने बच्चों को भी संभालिए ताकि आप भी अच्छी तरह से इन कथाओं के ऊपर इस धाम का पूरा लाभ उठा सके।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Thank you.